क्या आप जानते हैं कि आप परी कथा की कहानियों को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और कई अन्य पॉडकास्टिंग एप्स और वेबसाइटों पर सुन सकते हैं? अधिक जानने के लिए बालगाथा.com पर जाएं।
मेगन और जीवन का पुल। मेगन फ्रिट्स और राजकुमारी इलावुरासी झाड़ियों के पीछे छिपते लताओं से बचते हुए निकल रहे थे। धुप दुम धुप। डाली टहनी से बने इंसान उनका पीछा कर रहे थे। उनकी नाकें फूली हुई थी और वे हर किसी पर क्लोरोफिल छिड़क रहे थे। एह, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे प्यारे कपड़े खराब कर दिए, हरियल बंदर, राजकुमारी गुस्से से चिल्लाई। पिच पिचाक पिच, वो पीछा कर रहे थे। मेगन फ्रिट्स और राजकुमारी उनसे बाल बाल बचते हुए निकल रहे थे। इस तरफ, मेगन ने राजकुमारी के हरे रंग से सने हुए कुर्ते को खींचा। मैं एक राजकुमारी हूं और किसी और के बताए रास्ते पर नहीं चलती, इलावुआरासी तुनक कर बोली। अचानक डाली टहनियों के इंसानों ने फिर से पिचकारी मारी, सीधा इलावुआरासी के मुंह पर। उफ, वो गुस्से से चिल्लाई। ठीक है, आती हूं, इधर हूं, यहां पुल पर, मेघन फुसफुसाकर बोली। उसे एक बड़ी दरार मिली थी जिससे फिसला जा सकता था। धुप धुम धुप धुम, वो डाली टहनियों से बने मानव बहुत पास आ गए, इतने पास कि कच कच कचा कच, बस मेगन की नाक कट ही जाती। डर के मारे वो एक धुन गुनगुनाने लगी। तब भी इलावुआरासी ने उसका हाथ खींचा और झटक कर उसे उस दरार में घसीट लिया। मेगन, इलावुआरासी और फ्रिट्स उसमें गिरते चले गए, कंकड़ पत्थरों और झाड़ पत्तों पर फिसलते फिसलते वो नीचे एक पुल पर आ पहुंचे। मेघन ने उठकर अपने कपड़े झाड़े। अचानक उसने उन जीवों को वही धुन गुनगुनाते हुए सुना। वो उस आवाज की तरफ दौड़ने लगी। इलावुआरासी ने उसे जोर की आवाज देकर रोका, क्या कर रही हो तुम? और फ्रिट्स, तुम वहीं रुको। डालियों और पत्तों में झूलती और पेड़ों पुलों को फांदती हुई इलावुआरासी मेगन और फ्रिट्स के साथ बढ़ती गई। चलते चलते वो पुल के बीचों बीच आ पहुंचे। अरे वाह, पुल के ऊपर अनेक जीव पेड़ की जड़ों और तनों को चोटी की तरह गूंथ रहे थे। जैसे जैसे चोटियां बनती जाती, दीवारें मेहराब और दरवाजे बनते चले जा रहे थे। वे क्या है? राजकुमारी ने कमरे के केंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। दर्जनों टहनी के आकार के शरीर और पुआल से बने सिर थे। बड़ा अजीब सा नजारा था। वो सभी जड़ों को एक साथ गूंथते हुए गुनगुना रहे थे। कौन हो तुम और क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेघन ने उनके कंधों के ऊपर से झांकते हुए पूछा।
हम इस पुल को और मजबूत बना रहे हैं,
एक डाली टहनी से बने प्राणी ने कहा।
और तुम लोग कौन हो? कहां से आए हो? किधर जाना है?
मैं हूं मेगन, घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं भाई, मेगन ने जवाब दिया।
घर का रास्ता तो है अब बहुत दूर, आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे हुजूर,
उस जीव ने कहा।
पर यही तो है घर जाने का रास्ता, यही तो है वो लंबा सा पुल,
मेगन ने फिर कहा। जीव ने पास के पेड़ों से लटकती जड़ों को मुट्ठी में पकड़ा और बोला,
देखो देखो इन्हें, हजारों शाखाएं हैं इस गुच्छे में, है सिर्फ एक, बस एक वो शाखा जो ले जाएगी तुमको तुम्हारे घर।
उस जीव की बात सुनकर मेघन चकराई,
क्या हजारों रास्ते?
एक तरीका है, केवल पौधाए महान जानते हैं कि इनमें से कौन सी जड़ किधर की शाखा तुम्हें तुम्हारे घर ले जा सकती है। पर अफसोस, तुम तो पौधाए महान की भाषा पौधाई में नहीं बोल पाती।
किसने कहा? बोल पाती हूँ,
बहुत अच्छे से बोल पाती हूँ,
मेघन ने झूठ बोला।
बहुत अच्छे, जीव ने कहा। फिर तो तुम घर पहुंच जाओगी, मगर याद रहे, अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो किसी गलत रास्ते पर जाकर तुम सदा के लिए भटक जाओगी।
मेघन डाली टहनी वाले जीव के पीछे चल पड़ी। थोड़ा आगे ही पुल पर एक विशाल पेड़ खड़ा था, उसके पत्ते बहुत घने थे, उसकी टहनियां, डालियां और जड़ें दूर दूर तक चारों दिशाओं में फैली हुई थी।
अब पौधाए महान, अब मैं अपने घर का रास्ता ढूंढ रही हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेघन ने धीरे से पूछा।
ये पौधाए महान नहीं है,
उस जीव ने बोला।
वो रहे पौधाए महान,
जीव ने उस विशाल पेड़ के नीचे खड़े एक कन फूल के पौधे की तरफ इशारा किया।
ओह, मेघन बोली, पौधाए महान, क्या आप मुझे घर जाने का रास्ता बता सकते हैं,
मेघन ने उस कन फूल के पौधे से पूछा। पौधा शांत खड़ा रहा।
तुम तो कहती थी कि तुम्हें पौधाई में बात करना आता है,
जीव त्योरिया चढ़ाते हुए बोला।
हाँ हाँ, पौधाई आती है ना,
मेगन हकलाई। वो थोड़ा कांप रही थी। उसने देखा कन फूल का पौधा भी ठीक उसी की तरह धीरे धीरे हिल रहा है। मेघन ने अपना दायां हाथ ऊपर किया, फिर अपना बायां हाथ उठाकर सर पर रखा और गोल घूमी। पौधाए महान अचानक एक चमकीली रोशनी से जगमगा उठे।
मुझे घर जाना है पौधाए महान,
मेघन फिर बोल उठी। पौधाए महान ने अपने कुछ रेशमी मुलायम पंख जैसे बीज हवा में उछाले। वो बीज हवा में धीरे धीरे तैरने लगे।
देखा, पौधाए महान हमारी मदद करना चाहते हैं। ये बीज हमें रास्ता दिखाएंगे।
बीजों के पीछे दौड़ते हुए मेघन बोली।
ओहो, और क्या बोले पौधाए महान?
हाफते दौड़ते हुए इलावुआ रासी ने मेघन से पूछा।
उन्होंने हमें इन बीजों के पीछे जाने के लिए बोला है।
जल्दी करो, हमारे पास बहुत समय नहीं है, मेघन बोली। वो पेड़ों की डालियों के बीच से कूदते हुए झाड़ झंकारों से उछलते हुए आगे दौड़ते गई।
उनके सामने एक सीढ़ी थी। वो बीज उस पुरानी मोटी जड़ों से बनी सीढ़ी के ऊपर उड़ने लगे। वो सभी फटाफट सीढ़ी चढ़ने लगे। एक एक करके तीनों सीढ़ी के ऊपर जा पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था। मेघन उन बीजों के पीछे भागती जा रही थी। रास्ते के दूसरे छोर पर तेज उजाला दिख रहा था।
हम घर पहुंच गए फ्रिट्स,
मेघन खुशी से उछलते हुए पीछे घूमी। अरे, फ्रिट्स तो कहीं नहीं दिख रही थी और ना ही राजकुमारी। अचानक वो पुल हिलने लगा। उन जीवों ने मेघन, फ्रिट्स और इलावुआ रासी को सूंघ लिया था। मेघन के पांव डगमगाए नहीं। उसको पुल के एक छोर पर अपना शहर साफ दिखाई दे रहा था। मेघन का पीछा करते हुए वो जीव अब उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। कुछ ही पलों में कनफूल के वो बीज वहां से बाहर जाने वाला फाटक खोलने वाले थे। मेघन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था, पर फ्रिट्स और राजकुमारी इलावुआ रासी, उनके बिना वो घर कैसे लौटती? तब भी उसे इलावुआ रासी की चीख सुनाई दी। उधर फ्रिट्स भी म्याऊ म्याऊ करने लगी। मेघन ने देखा कनफूल का आखिरी बीज उड़कर उस पार जा चुका था। देखते ही देखते वो फाटक चर चर करके बंद हो गया।
फ्रिट्स, मैं अभी आई,
मेघन चिल्लाई और तेजी से उस रास्ते पर वापस दौड़ी जिससे वो यहां तक आई थी। झाड़ झंकार पार करती हुई मेघन एक बार फिर चली जैसे रास्ते को चीरता कोई तीर।
मदद करो मेरी, जल्दी आओ,
इलावुआ रासी मेघन को बुला रही थी। एक डाली टहनियों से बना जीव पुल से लटका हुआ था। उसे चोट लग गई थी। वो एक हाथ से पुल को कस के जकड़ा हुआ था। इलावुआ रासी और फ्रिट्स उसके उस हाथ के ऊपर खड़े हुए थे। इलावुआ रासी और फ्रिट्स उस जीव का हाथ पुल से छुड़वाना चाहते थे। वो उसे खरोंच रहे थे, उसको पांव से मार रहे थे।
रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों,
मेघन चिल्लाई। उसने इलावुआ रासी और फ्रिट्स को उस जीव के हाथ के ऊपर से हटाया। वो गुर्राया और एक छलांग में वापस पुल पर चढ़ गया। वो उन तीनों के सामने पहाड़ की तरह सीना तान कर खड़ा हो गया। वो फिर गुर्राया और चारों तरफ वही गाढ़ा हरा पदार्थ क्लोरोफिल फैलाने लगा।
मेघन अपने दोनों हाथ वैसे ही हिलाने लगी जैसे उसने पौधाए महान के सामने खड़े होकर हिलाए थे। वो पौधाई में बात कर रही थी।
वो जीव फिर घुर्राया,
मगर इस बार हल्की आवाज में, मानो मेघन से शिकायत कर रहा हो।
ये हमें चोट नहीं पहुंचाएगा, मेघन बोली। ये यहां केवल इस पुल की रक्षा करने के लिए खड़ा है।
तुम्हें कैसे मालूम? इलावुआ रासी ने पूछा।
कुछ तो है यहां, मेघन बोली। यहां की हर चीज कुछ कहना चाहती है। देखो, मुझे कैसे अपने आप पौधाई में बात करना आ गया। वो जीव, वो डरा हुआ है और गुस्सा भी। वो कह रहा है कि हम मनुष्य पेड़ों को काट देते हैं।
मेघन ने प्यार से उस जीव का सर थपथपाया। तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है, हम तो बस अपने घर लौटना चाहते हैं, मेघन उस जीव से बोली। उस जीव ने मेघन की ओर दुख भरी आंखों से देखा। वो अपनी जड़ों और टहनियों से बने हाथ धीरे धीरे हिला रहा था। वो बताना चाहता था कि कन फूल के जादुई बीज अब पुल के पार उड़कर चले गए थे। तब भी उस जीव ने अपने पांव को देखा। उसके अंगूठे से एक कन फूल का पौधा उग रहा था। उस पौधे में केवल एक जादुई बीज था। उस जीव ने वो मखमली बीज तोड़कर मेघन को दिया और देखते ही देखते उसकी जड़ें, पत्ते, टहनियां सब सूख गए। वो धूल बन चुका था। मेघन ने अपनी हथेली पर रखे उस बीज को देखा। वो हल्का हल्का चमक रहा था। धीरे धीरे उसकी चमक और तेज होती गई। जब मेघन की आंख खुली, वो केबल कार के पास थी। करके फ्रिट्स उसको प्यार से चाट रही थी।
फ्रिट्स,
मेघन मुस्कुराते हुए बोली। मेघन ने अपना सर उठाकर आसपास देखा तो वही बड़ा पत्थर जीव दिखाई दिया जिसकी नाक से एक लंबा तस्मा लटक रहा था। मेघन मुस्कुराती रही। बिल्लियों को इस तस्मे से खेलना कितना पसंद है, उसने सोचा। फिर उसकी नजर बाकी बिल्लियों को ढूंढने लगी, पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। मेघन खड़ी हुई और उसने अपने कपड़ों से धूल मिट्टी झाड़ी। ये क्या है, मेघन सोचते हुए बोली। उसकी उंगलियों के बीच एक पंख जैसा रेशमी मुलायम बीज फंसा हुआ था। ये एक जादुई बीज है फ्रिट्स, जानना चाहती हो ये क्या है? उसने फ्रिट्स को गोद में उठाते हुए पूछा। फ्रिट्स ने फिर म्याऊ किया। अच्छा सुनो, राही कितनी खुश होगी हमसे दोबारा मिलकर, है ना फ्रिट्स? आज का दिन कितना अच्छा और सुंदर है। मेघन सूर्यास्त की ओर चलती रही। फ्रिट्स उसके बगल में फुदकते हुए चली जा रही थी। बीच में फ्रिट्स रुक रुक कर दूर उस घने कोहरे की ओर देख रही थी जहां केबल कार थी। केबल कार के पास काले कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी जिसे सिर्फ
फ्रिट्स देख सकती थी। उस परछाई ने खुशी से अपने हाथ धीरे धीरे हिलाने शुरू किए। फ्रिट्स ने प्यार से कहते हुए अलविदा कहा। राजकुमारी ने अपनी उंगलियों को चटकाने के अंदाज में आपस में जोड़ा। चटक।
परी कथा की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया? यदि ऐसा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया या फीडबैक सुनना पसंद करेंगे। ऐसी कई कहानियां आप सुन सकते हैं mlftpodcast.in पर जाकर। इस कहानी का निर्माण गाथा स्टोरी ने किया है।